हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कि ये समय विशेष रूप से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की ओर से हरिनाम का समय चल रहा है। यहां लिखा है हरिनाम सप्ताह है, तो सप्ताह नहीं है, सप्ताह तो 7 दिन होता है। ये कितने दिन का है? 17 दिन का है, 17 दिन का है ना। इसमें लिखिए 17 दिवसीय विश्व हरिनाम महोत्सव, 17 डेज वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल है ना, 17 दिवस का है। तो हमें विशेष रूप से हरि नाम की महिमा पर विचार करना है। श्री चैतन्य अपने शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक में कहते हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। श्री चैतन्य की शिक्षा, ये दूसरे श्लोक में जो शिक्षा है वो ये है, प्रार्थना के रूप में कि हमें प्रार्थना करना है भगवान से, तो ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से कि आपने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है। तो अगर कृपा देखें तो आपको कृपा दिखाई देगी। तो श्री चैतन्य हमें समझा रहे हैं हमें प्रार्थना करना चाहिए। कैसे प्रार्थना करना चाहिए? नाम नाम कारी भूधा निज सर्व शक्ति, कि आपने अपने नाम बहुत से दिए हैं और निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता, और उन नामों में अपनी समस्त शक्तियां अर्पित की हैं। तत्रार्पिता नियमित है स्मरण न काला, और नियम जो है किसी प्रकार का नहीं बनाया आपके स्मरण करने के लिए, कोई किसी समय का नियम नहीं बनाया आपने। ये तादृशी तब कृपा भगवान ममा भी, तो आपके ऊपर मेरी इतनी कृपा होने के बावजूद भी मेरा दुर्भाग्य। तो देखना क्या है, भगवान की कृपा देखना है और अपना दुर्भाग्य। भगवान की कृपा भी जितनी है कोई अंत नहीं है, और हमारे दुर्भाग्य का भी कोई अंत नहीं है। आपकी कृपा बहुत है, तो भगवान की कृपा देखना है, भगवान का गुण देखना है और अपना दोष देखना है, तो आपकी भक्ति शुरू होगी। तो आपने जो कृपा हमारे ऊपर की है, मेरे ऊपर आपने जो कृपा की है वो नाम दिया है, और कैसा नाम दिया है, अपनी समस्त शक्तियां अर्पित कर दी हैं अपने नामों में, अपनी समस्त शक्तियां अर्पित कर दी हैं। गीता में भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन हम भगवान की शरण लेने योग्य नहीं है, हम भगवान की शरण लेने के योग्य नहीं है। तो फिर भगवान ने इतनी कृपा की कि मेरी शरण नहीं ले सकते हो, तो क्या करो, मेरे नाम की शरण लो। और नाम की शरण लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल उनका नाम बोलना है, स्मरण करना है नाम का, और हर स्थिति में स्मरण करना है, कोई समय का आपने नियम नहीं बनाया, नाम के स्मरण करने का कोई नियम नहीं बनाया आपने। तो पिछले युगों में जैसे द्वापर युग में पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, तो पूजा के बहुत विधि विधान थे, समय भी होता था, कुछ विशेष समय होता था, कुछ विशेष स्थान, हर स्थान में आप पूजा नहीं कर सकते, हर समय पूजा नहीं कर सकते, और विधि बहुत कठोर विधि थी। उसी प्रकार से कृत युग यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है, तो हर समय यज्ञ नहीं किए जा सकते, हर व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता, हर स्थान में यज्ञ नहीं हो सकता, कुछ विशेष स्थान होना चाहिए, कुछ विशेष योग्य व्यक्ति ही यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ करवा सकते हैं। तो द्वापर में परिचर्या थी, पूजा थी, तो उसमें बड़े कठोर नियम थे, हर समय नहीं कर सकते, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, और हर स्थान में नहीं किया जा सकता। इसलिए त्रेता युग में यज्ञ की विधि थी, तो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हर समय नहीं कर सकता, हर स्थान में नहीं हो सकती पूजा। उसी प्रकार से सतयुग में ध्यान की विधि दी, तो ध्यान की विधि भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हर स्थान में नहीं कर सकता, बिल्कुल एकांत होना चाहिए, एकांत स्थान, पवित्र स्थान, उसमें भी बिल्कुल अकेले, एकांत में भी दो लोग एक साथ नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल अकेले। ध्यान योग की विधि और बहुत कठोर नियम, खाना पीना छोड़ करके हजारों साल तक ध्यान करना। तो अब अगर उस तुलना में देखा जाए तो कलयुग में भगवान ने बहुत कृपा की है, बहुत कृपा की है। आप हर स्थिति में, अपवित्र स्थिति में, हर स्थिति में और हर समय और हर जगह आप नाम ले सकते हैं। तो एकादृशी तब कृपा भगवान ममापी, तो आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर, दुर्देवम मेरा दुर्भाग्य, ईदृश में हा जमीन अनुराग है कि मेरा अनुराग नहीं है, आपके नामों में अनुराग नहीं है। तो आपने कोई नियम नहीं बनाया है, लेकिन हम लोग नियम बनाते हैं, तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग नियम बनाते हैं कि इस स्थान में हरिनाम नहीं लेना है, ये स्थान जो है अच्छा नहीं है, अपवित्र स्थान है, या ये समय ठीक नहीं है, ये समय अच्छा नहीं है, शाम का समय है या रात का समय है, इस तरह से कुछ नियम बनाते हैं। और या अपने जो है घर में किसी का जन्म हुआ है तो नहीं करना है, किसी का मरण हुआ है तो नहीं करना है, कुछ मुनाफा हुआ है तो नहीं करना है, घाटा हुआ है तो नहीं करना है, ये हर्ष का समय है इसलिए नहीं करना है, ये शोक का समय है इसलिए नहीं करना है, तो इस तरह से हम लोग नियम बनाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है। तो भगवान की तो कृपा है कि उन्होंने कोई नियम नहीं ऐसा बनाया, और हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम जो है कोई मांसाहार करता है, कोई व्यभिचार करता है, कोई नशा करता है, तो हम लोग कहते हैं ये नहीं कर सकते हरिनाम, वो व्यक्ति हरिनाम नहीं कर सकता है, चार नियमों का पालन करना तब हरिनाम करना है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है अगर हम इस तरह से बोलते हैं। तो कोई देश काल पात्र का कोई नियम नहीं है, हर स्थान में किया जा सकता है और हर काल में किया जा सकता है और हर व्यक्ति कर सकता है। एकादृशी तव कृपा भगवन ममापि, दुर्दैवम मेरा दुर्भाग्य है, ईदृश में हा जनि अनुराग, अनुराग नहीं है इसलिए नियम बनाते हैं, ना करने का कुछ ना कुछ बहाना निकालते हैं, तो ये जो है हमारा दुर्भाग्य है। तो हम ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं, भगवान ने तो कृपा की है कि हर समय करो, हर जगह करो, हर व्यक्ति करो नाम, और हम जो है नियम बनाते हैं, तो दुर्भाग्य। तो वो जो दुर्भाग्य है वो श्री चैतन्य देव ने जो है उस दुर्भाग्य को सौभाग्य के रूप में बदला और हर जगह हरि नाम फैलाया, पूरे भारत में हरि नाम फैलाया है ना, और फिर भी लोग नहीं कर रहे थे, उनका दुर्भाग्य था, और विदेशों में लोग नहीं जानते थे, तो प्रभुपाद ने पूरे विश्व में फैलाया इस हरि नाम को, तो ये सौभाग्य है। और हमारा अनुराग नहीं है हरि नाम में, हमारी श्रद्धा नहीं है हरि नाम में, तो हम फिर ना करें, हम लोग जो है ये सोचते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने नियम दिया कि आपको करना ही है, ये हर हालत में करना है, आपका अनुराग है हरि नाम में नहीं है, आपको करना है, ये आपके ऊपर भार डाला है, तो ये सौभाग्य है। हमारा अनुराग नहीं है हरि नाम में तो भी हम हरि नाम कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा सौभाग्य। गीता भगवान ने कहा है कि अगर श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत असत इति उचित पाठ, श्रद्धा अगर नहीं है तो जो भी हवन किया जाता है, श्रद्धया हुतम दत्तम या दान दिया गया श्रद्धा के बिना, तपस्तप्तम या जो तपस्या की गई श्रद्धा के बिना, कृतम चेत या जो कुछ भी कार्य किया गया है, असत इति उचित पाठ, वो असत होता है, न जाता प्रेत नो है, वो ना तो इस जीवन के बाद कुछ फल देता है, न इस जीवन में कुछ फल देता है, लेकिन जहां तक हरिनाम की बात है निश्चित रूप से फल मिलेगा। श्रद्धा नहीं है तो भी ये हरिनाम की महिमा। बाकी जितने भी कार्य हैं श्रद्धा अगर नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं है, ना इस जीवन में लाभ है ना अगले जीवन में लाभ है। लेकिन हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि श्रद्धा नहीं है तो भी आप करते हैं तो भी लाभ है। तो हरिनाम की बहुत महिमा है। श्रीमद् भागवत के 36 स्कंद में विशेष रूप से नरक से छूटने का उपाय, सरल उपाय बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल की कथा बहुत प्रसिद्ध है, बल्कि श्रीमद् भागवत की एक पहचान यह भी है कि इसमें अजामिल की कथा मिलती है। श्रीमद् भागवत जो 18 पुराणों में से एक विशेष पुराण है, तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं श्रीमद् भागवत की जो दूसरे पुराणों में नहीं है, कुछ विशेषताएं हैं। तो एक विशेषता यह भी है कि इसमें अजामिल की कथा मिलती है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने सृष्टि का वर्णन किया है, अलग अलग लोकों का वर्णन किया है, ब्रह्मांड का वर्णन किया, 14 लोकों का वर्णन किया है, फिर पृथ्वी के 7 द्वीपों का वर्णन किया, 7 समुद्रों का वर्णन किया, फिर जम्बू द्वीप के 9 वर्षों का भी वर्णन किया, और फिर नरकों का भी वर्णन किया कि पृथ्वी के नीचे दक्षिण दिशा में नरक है, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, और उनका जो है उनकी यातनाओं का वर्णन किया कि कौन व्यक्ति कैसे कर्म करता है तो उसे किस नरक में डाला जाता है, उसको क्या यातनाएं प्राप्त होती हैं। तो उसको सुनकर के परीक्षित महाराज को बहुत चिंता हुई कि जो पापी नरक में जाते हैं तो शरीर छोड़ने के बाद नरक में उनको ले जाया जाता है, तो उस समय क्या कोई उपाय है छूटने का। तो परीक्षित महाराज चूंकि भक्त हैं इसलिए उनको बहुत चिंता हो गई कि नरक से छूटने का क्या कोई उपाय है, और सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि हाँ उपाय तो है लेकिन इस जीवन काल में प्रायश्चित करना होगा, इस जीवन काल में प्रायश्चित करना होगा और फिर आगे पाप ना करें, और फिर एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित करना, और कितने पाप तो बहुत परिश्रम, और उसके बाद भी अगर पाप हो गया तो फिर बेकार हो गया, प्रायश्चित बेकार हो गया। तो परीक्षित महाराज ने इस विधि को स्वीकार नहीं किया है, ये विधि जो है उपयोगी नहीं है। जैसे कई बीमारियां हैं आपके शरीर में तो उनके अलग अलग इलाज कराओ, तो बहुत इसमें लंबा काम हो जाता है, बहुत लंबा काम है। एक एक बीमारी का एक एक अलग अलग इलाज कराओगे और उसमें भी कितना टाइम लगेगा, उसके बाद भी जो है कुछ गलती कर देते तो फिर से बीमारी आ जाएगी। तो परीक्षित महाराज चाहते हैं कि एक ऐसा उपाय है जिसमें सब प्रकार के पाप दूर हो जाए, एक ऐसी विधि बताइए जिसमें पापी जो है सभी अपने सभी पापों से मुक्त हो जाए एक ही उपाय से। तो वो ज्यादा अच्छा ना है कि आपको 50 तरह की बीमारियां हैं और एक दवाई से 50 तरह की बीमारियां ठीक हो जाएं, तो वो ज्यादा अच्छा है ना कि हर बीमारी का अलग अलग इलाज करें आप। कितना इसमें परिश्रम कितनी उलझन है। तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि पापी जो है कुछ ऐसा उपाय बताइए कि पापी जो है नरक में जाने से बच जाए, उसकी रक्षा हो जाए। तब सुखदेव गोस्वामी अजामिल की कथा सुनाते हैं, और अजामिल की कथा में मतलब इतना शक्ति बताई है, नाम की इतनी शक्ति बताई है कि अजामिल नाम को नहीं जानता है कि ये भगवान का नाम है, अपने पुत्र को ही नारायण बोलता था, अपने पुत्र के लिए नारायण शब्द का उच्चारण करता था। और यमदूत आए उसको लेने के लिए, उसने फिर उसी अभ्यास के कारण अपने पुत्र को ही नारायण नाम से बुलाया, अपने पुत्र को ही बुलाया नारायण नाम से। और विष्णुदूत आ गए और उन्होंने जो है रक्षा कर ली, अजा मिल गई। तो बहुत बड़ी ये आश्चर्य की बात है। अगर कुछ आश्चर्य है तो अजामिल की कथा में जो है आश्चर्य मिलता है, बहुत बड़ा आश्चर्य मिलता है। तो श्रीमद् भागवत के 36 स्कंद के अध्याय 2 के बाद जो है एक पूरक टिप्पणी है जिसमें प्रभुपाद ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार टिप्पणी लिखी है। इस अध्याय के श्लोक 9 और 10 की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा की गई टीका एक वार्ता लाभ के रूप में है कि किस तरह कोई भगवान नाम का कीर्तन करने मात्र से सारे पाप भावों से मुक्त हो सकता है। तो सुनिए बड़े ध्यान से, वार्तालाप का मतलब है प्रश्न उत्तर, कि इस तरह का भी प्रश्न उठाया जा सकता है। तो ये जो है इसलिए ये बहुत सरल हो जाता है, ये विषय बड़ा सरल हो जाता है जब प्रश्न उठाया जाता है और उसका उत्तर भी दिया जाता है। तो ये जो विषय है बड़ा रोचक हो जाता है, सरल हो जाता है। तो कोई कह सकता है, अब कोई अगर कहे मतलब आपका ही प्रश्न, समझ लो कि आपका ही ये प्रश्न है, मान लीजिए ये स्वीकार किया जा सकता है कि भगवान नाम के कीर्तन से मनुष्य पापी जीवन के सारे फलों से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यदि कोई पूर्ण चेतना में रहते हुए पाप कर्म करता है, वो भी एक बार नहीं अपितु अनेक बार, तो वो अपने को ऐसे पापों के फलों से मुक्त करने में अक्षम रहता है, चाहे उनके लिए उसने 12 या अधिक वर्षों तक प्रायश्चित क्यों न किया हो। तो फिर ये कैसे संभव है कि केवल एक बार भगवान का नाम लेने से कोई तुरंत ही ऐसे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है? ये प्रश्न है, ये प्रश्न लग रहा है ना एक कुछ है, उचित लग रहा है ना, एक उचित बात लग रही है, सोचने वाली बात है। क्या सोचने वाली बात है? कि कोई व्यक्ति पूर्ण चेतना में रहते हुए पाप कर्म करता है, पूर्ण चेतना, एक तो बच्चे की चेतना होती है जो विकसित नहीं है, तो वो जो है कुछ करता है, मान लो केले को मारता है, कुछ करता है ना, तो उसकी पूर्ण चेतना मैं नहीं कर रहा हूं, उसकी चेतना विकसित नहीं है, तो बच्चा जो है कुछ भी करता है ना, तो वो जानता नहीं है। लेकिन दूसरी स्थिति क्या है कि कोई एक बार नहीं अपितु अनेक बार पूर्ण चेतना में रहते हुए पाप कर्म करता है, तो अपने को ऐसे पापों के फलों से मुक्त करने में अक्षम रहता है, चाहे उसने उनके लिए 12 वर्षों तक प्रायश्चित क्यों ना किया हो। 12 साल तक भी प्रायश्चित करो तो भी नहीं आप छूट सकते हैं, कि एक बार प्रायश्चित, एक बार अगर आपने पाप किया तो 12 साल प्रायश्चित करना पड़ेगा। एक बार का किया हुआ पाप 12 साल तक प्रायश्चित करो तो एक बार का पाप दूर होगा, अनेक बार पाप किए तो कितने बार आप 12-12 साल तक प्रायश्चित करेंगे? तो प्रायश्चित की विधि तो अब हो नहीं सकती ना। तो यहां पर प्रश्न है, तो फिर ये कैसे संभव है कि केवल एक बार भगवान का नाम लेने से कोई तुरंत जैसे पापों के फलों से मुक्त हो जाता है? तो प्रश्न करने में कोई अपराध नहीं है, अगर आप निष्कर्ष निकालते हैं तो फिर अपराध है, अगर आप तर्क देते हैं तो अपराध होता है, कि नहीं हो नहीं सकता, मैं नहीं मानता, तो फिर अपराध होगा। यदि संशय है, आपका संशय है, और संशय का आप समाधान करने के लिए अपना संशय अगर प्रकट कर रहे हैं तो अपराध नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि इसका समाधान है, इसका उत्तर है। इस तरह से अगर आप प्रश्न करते हैं तो मतलब आपके अंदर श्रद्धा है, संशय है, लेकिन श्रद्धा क्या है कि संशय का उत्तर दिया है, तो वो अपराध नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन कोई व्यक्ति जो है तर्क करे और निष्कर्ष निकाले कि नहीं हो सकता, तो फिर क्या होता है, तो फिर अपराध होता है ना। तो यहां पर प्रश्न करने की विधि बताई गई कि प्रश्न करो आप, तो आपका जो प्रश्न है वो आमंत्रित है। प्रभुपाद प्रश्नों को आमंत्रित कर देते, इनवाइट करते थे प्रश्नों को। तो प्रश्न इस प्रकार से किए जाने चाहिए कि आपके अंदर ये भावना हो कि आपका जो प्रश्न है इसका उत्तर है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका उत्तर इस अध्याय के श्लोक 9 तथा 10 का उदाहरण देते हुए कहते हैं, भगवान विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन सोने या अन्य कीमती वस्तु की चोरी करने वाले के प्रायश्चित भी सर्वोत्तम विधि है। सोना चुराना बहुत बड़ा पाप है, महापाप के अंदर आता है सोना या अन्य कीमती वस्तु की चोरी करना। एक तो है कि आपने खाने के लिए कुछ फल चुरा लिया, इतना बड़ा पाप नहीं खाने के लिए चुरा लिया, इतना बड़ा पाप नहीं है। लेकिन सोना चुराना महापाप है, अन्य कीमती वस्तु चुराना तो महापाप है ना। तो सोने अथवा अन्य कीमती वस्तु की चोरी करने वाले के लिए भी ये प्रायश्चित है। शराबी कितने बार उसने शराब किया तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। लेकिन भगवान का जो पवित्र नाम है इसका जो कीर्तन है ये उसका भी प्रायश्चित हो जाता है। मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला, मित्र कोई आपका मित्र है आपके ऊपर विश्वास कर रहा है और आप उसके साथ विश्वासघात करते हैं तो बहुत बड़ा ये जो पाप है। और मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले या ब्राह्मण के हत्यारे, ब्रह्म हत्या उसको बोलते हैं, ब्राह्मण की हत्या, या गुरु की पत्नी के साथ संभोग करने वाले, गुरु पत्नी गमन कितना बड़ा पाप है। तो इन सब पापों की सर्वोत्तम विधि, प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। स्त्रियों की हत्या करने वाले बहुत बड़ा पाप है, राजा की हत्या या पिता की हत्या करने वाले या गमों की हत्या करने वाले तथा अन्य सभी पापियों के लिए ये प्रायश्चित की सर्वोत्तम विधि है भगवान विष्णु के नाम का मात्र कीर्तन करने से। ऐसे पापी व्यक्ति परम भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, अतः भगवान ये सोचते हैं कि चूंकि इस व्यक्ति ने मेरे पवित्र नाम का कीर्तन किया है अतः इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मनुष्य पापी जीवन के लिए प्रायश्चित कर सकता है और पवित्र नाम के कीर्तन से उसके सारे पाप फल नष्ट हो सकते हैं। यद्यपि ये प्रायश्चित नहीं कहलाता, जो पवित्र नाम का कीर्तन ये प्रायश्चित नहीं कहलाता। सामान्य प्रायश्चित पापी व्यक्ति को अस्थाई रूप से रक्षा प्रदान कर सकता है। अस्थाई रूप से मतलब कोई सामान्य जो प्रायश्चित होता है, विधि तो बहुत लंबी है लेकिन अस्थाई रूप से रक्षा की उसने, यानी उस जो पहले पाप किया था उसको मिटा दिया, लेकिन वो अस्थाई है, टेम्परेरी है। तो जब आप आगे पाप करेंगे तो क्या होगा, वो लगेगा आपको। जो सामान्य प्रायश्चित है पापी व्यक्ति को अस्थायी रूप से रक्षा प्रदान कर सकता है, किंतु उसके हृदय में पाप कर्म करने की जो जड़ें गहरी जमी हुई हैं उनसे वो हृदय स्वच्छ नहीं हो सकता। 12 साल तक प्रायश्चित किया आपने तो एक पाप जो है आपका दूर हो गया, लेकिन वो पाप करने की जो वासना है हृदय में वो तो दूर नहीं हुई, तो क्या होगा, फिर से पाप होगा। सोचिए 12 साल तक आपने जो है विधि का पालन किया प्रायश्चित किया, लेकिन जो है आपका हृदय स्वच्छ नहीं हुआ। अतः प्रायश्चित भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन जैसा शक्तिशाली नहीं है। जैसे कि कोई वृक्ष है, आपने ऊपर से काट दिया, आपने वृक्ष को ऊपर से काट दिया तो चलो एक हल हो गया कि भाई ये विष का वृक्ष है, हमने इसको काट दिया, लेकिन ये स्थाई हल नहीं है, अस्थाई है, क्योंकि जड़ है उसकी फिर से उगाएगा और विष के फल लगेंगे। उसी प्रकार से किसी पाप को जो है आपने प्रायश्चित की विधि के द्वारा दूर कर दिया और आप सोचते हैं कि आप अब सुरक्षित हो गए, आप सुरक्षित नहीं है क्योंकि जड़ है, पाप की जड़ जो वासना है, भोग की वासना है तो वो तो अपने अंदर है तो फिर से होगा। काम एष क्रोध एष रजोगुण समन्वा महासनो महापापमा विद्यनमे मेरिणम। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये पाप की जड़ है, वो तो हृदय के अंदर है, आपका हृदय शुद्ध नहीं हुआ प्रायश्चित के द्वारा। तो हाँ ये बताया गया है कि प्रायश्चित भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन जितना शक्तिशाली नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार पवित्र नाम का उच्चारण करता है, एक बार मतलब हरे कृष्ण मंत्र भी नहीं, 16 नाम भी नहीं, एक नाम जैसे नारायण या कृष्ण या हरि कोई भी नाम एक बार अगर उच्चारण करता है, केवल एक बार पवित्र नाम का चरण करता है और भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरण ले लेता है तो भगवान उसे अपना आविभावी मान लेते हैं, उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्मुख रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीधर स्वामी ने की है। इसलिए जब अजामिल यमराज के दूतों द्वारा ले जाए जाने के महान खतरे में था तो भगवान ने तुरंत ही उसकी रक्षा करने के लिए अपने निजी दूतों को भेजा। अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण पुकारा था तो उसने भगवान को तो नहीं पुकारा, तो शुद्ध नाम भी नहीं है। अजामिल ने जो नाम उच्चारण किया था ये शुद्ध नाम नहीं था, ये तो नामाभास था। और भगवान आए भी नहीं उसकी रक्षा के लिए। शुद्ध नाम जब आप उच्चारण करें तब भगवान आएंगे रक्षा करने के, संकट से रक्षा करने के लिए। जैसे गजेंद्र जब संकट में पड़ा था तो उसने भगवान को याद किया था, भगवान के गुणों को याद किया था, तो भगवान स्वयं आए थे क्योंकि वे गुण और किसी में हो ही नहीं सकते हैं, तो भगवान स्वयं आए उसकी रक्षा करने के लिए। द्रौपदी ने भगवान को याद किया था तो शुद्ध नाम था, हे कृष्ण द्वारका वासिन, तो भगवान स्वयं आए और द्रौपदी के वस्त्र बन गए, भगवान स्वयं आए रक्षा करने के लिए, तो शुद्ध नाम था। अजामिल ने भगवान का शुद्ध नाम नहीं लिया था, उसने क्या किया था, नामाभास, नाम का आभास है, अपने पुत्र के लिए जो है नारायण का नाम पुकारा था अपने पुत्र के लिए, तो भगवान नहीं आए रक्षा करने के लिए, लेकिन कौन आए, भगवान के दूत आए रक्षा करने। रक्षा तो हो गई, संकट से रक्षा हो गई और पापों से भी छूट गया। शुद्ध नाम में भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, भक्त की स्वयं आते हैं, और नामाभास में भगवान स्वयं नहीं आते लेकिन कभी रक्षा करा देते हैं। तो यहां पर जो विशेष बात है वो यह है कि भगवान का ध्यान तो फिर भी खींच जाता है। अजामिल ने भगवान का ध्यान खींच लिया, तो यहां पर लिखा है इसी, जब अजामिल यमराज के दूतों द्वारा ले जाए जाने के महान खतरे में था तो भगवान ने तुरंत ही उसकी रक्षा करने के लिए अपने निजी दूतों को भेजा। तो भगवान ने भेजा, भगवान ने क्या सोचा कि ये मुझे तो नहीं पुकार रहा फिर भी मेरा नाम तो ले रहा है तो भगवान ने विचार तो किया, भगवान का ध्यान तो गया उसकी तरफ, तो अगर भगवान का ध्यान अगर खींच जाए आपके ऊपर किसी प्रकार से तो पूरा लाभ है। तो जामिल के प्रति जो है भगवान का ध्यान खींच गया है ना, और क्या किया, भगवान ने तुरंत ही उसकी रक्षा करने के लिए अपने निजी दूतों को भेजा। क्योंकि जामिल सारे पाप फलों से मुक्त कर दिया था इसलिए विष्णु दूत उसके पक्ष में बोले, विष्णु दूतों ने उसका पक्ष लिया अयम मित्र निर्वेशो जन्म कोटि न सामती यद्याज हार विष्णु नाम स्वस्थ नम हरे। यमदूतों से उन्होंने जो है झगड़ा किया कि बड़े कष्ट की बात है, है? वो कोई जानता नहीं है, है? कानून को जानता नहीं है, है और वो जो है पूर्ण विश्वास के साथ है? आपके प्रति समर्पित है, विवश है, तो आप लोग जो है उसके साथ अन्याय करेंगे, जो पाप जो निष्पाप है उसको आप नरक में ले जाएंगे, उसको आप पापी मान करके उसको आप यातना देंगे। तो वो व्यक्ति तो खुद अपना पक्ष ले नहीं सकता, अपने पक्ष में कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि उसे कुछ कानून का कुछ पता ही नहीं है। तो क्या ये तरीका है आप लोगों का विशुद्ध जो है उनको डांट करके बोलना कि कोई व्यक्ति कानून जानता नहीं कुछ भी, तो आप उसको फिर भी अपराधी मान करके और कानून के विरुद्ध आप उसको जो है पकड़ेंगे, उसको दंड देंगे। वो तो जानता नहीं बेचारा कि कानून क्या होता है और वो कानून के अनुसार उसने क्या गलती की, क्या सही किया, तो आप उसको जो है उसके अज्ञान का फायदा उठा करके उसको आप पकड़ करके उसको दंड देंगे कि वो कुछ कर नहीं सकता, वो कमजोर है। तो विष्णु दूत जो है डांट रहे हैं, यम दूत हम डांट रहे हैं ना। यहां पर लिखा है कि विष्णु दूत उसके पक्ष में बोले, क्या बोले, अयम निकृत निर्वेश कोटि न सामती, ये तो जो है करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो चुका है, इस जीवन के नहीं करोड़ों जन्मों के, जन्म कोटि न सामती यदि आज हार विष्णु नाम सोचते हैं, जिसकी इसने जो है भगवान के पवित्र नाम का कल्याणकारी नाम का उच्चारण किया है, एक बार नाम लिया है, वो भी शुद्ध नाम नहीं है। तो विष्णु दूत उसके पक्ष में बोले, अजामिल ने पुत्र का नाम नारायण रखा था, चूंकि वो अपने पुत्र को अत्यधिक चाहता था अतः वो उसे बारंबार पुकारता था। अब देखो वो आसक्ति भी जो है रक्षा कर रही उसकी, ये बहुत एक आसक्ति है, अपने पुत्र में आसक्ति है। प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवयो विदु, ये आसक्ति जो है ये बहुत बड़ा बंधन है आत्मा का, लेकिन वही आसक्ति जो है अपने पुत्र में जो की है और उसके बीच में नाम आ गया भगवान का, तो वो आसक्ति भी जो है क्या कर रही है, उसको रक्षा कर रही है। आसक्ति के कारण वो अपने पुत्र को नारायण नाम बुला रहा है, आसक्ति तो पुत्र के पुत्र में है, उसका पुत्र तो भगवान नहीं है, जैसे माता यशोदा किस में आ सकते हैं अपने पुत्र समझ करके, वो भगवान ही समझती हैं, तो भी भगवान है वो, तो उनकी रक्षा हो रही है, सब यशोदा नंद सबकी रक्षा हो रही है कि वो भगवान में आ सकते हैं, नहीं जानते भगवान को तो भी। अजामिल का जो पुत्र है वो भगवान तो नहीं है, तो एक सामान्य जीव है, और ये आसक्ति तो उसको बंधनकारी है, लेकिन उसी भौतिक आसक्ति में क्या हो गया है, एक मिलावट हो गई है, क्या हरिनाम तो वो आसक्ति जो है कितनी उपयोगी है, कितनी लाभदायक है वो आसक्ति है? तो यहां पर लिखा है कि चूंकि वो अपने पुत्र को अत्यधिक चाहता था अतः वो उसे बारंबार पुकारता था, यद्यपि वो अपने पुत्र को बुलाता था किंतु ये नाम स्वयं पर्याप्त शक्तिशाली था, क्योंकि नारायण नाम परम भगवान नारायण से भिन्न नहीं है। अजामिल ने जब अपने पुत्र का नाम नारायण रखा तभी उसके पापी जीवन के सारे फल निरस्त हो गए, और चूंकि वो अपने पुत्र को पुकारता रहता था जिससे वो नारायण नाम का हजारों बार उच्चारण करता था, अतः अनजाने में वो कृष्ण भावना अमृत में प्रगति कर रहा था, अनजाने में भी है? फिर अब प्रश्न फिर से अब सुनिए, फिर प्रश्न क्या है, अभी तो उत्तर मिला, अब फिर प्रश्न है, कोई ये तर्क कर सकता है चूंकि वो निरंतर नारायण नाम का उच्चारण कर रहा था तो फिर उसके लिए एक वेश्या की संगति करना और शराब के विषय में सोचना कैसे संभव हुआ? फिर से प्रश्न है, कि उत्तर होगा कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर रहा है, लेकिन फिर प्रश्न क्या है कि वो फिर भी क्या कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, शराब पी रहा है, सब प्रकार के पाप कर्म तो लगा हुआ है वो, तो ये कैसे संभव है कि वो पाप कर्मों से छूट गया, सब पापों से छूट गया जबकि पाप में लगा हुआ है? कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति सब पापों से छूट चुका है और पाप कर्मों में लगा हुआ है और उसको पाप भी नहीं लग रहे हैं? वो पाप कर्मों में लगा है तो उसको पाप नहीं लग रहे हैं, पहले के पापों से छूट गया है उसको पाप नहीं लग रहे हैं? अपने पाप कर्मों के द्वारा वो बारंबार अपने ऊपर कष्ट लाता जा रहा था, इसलिए कहा जा सकता है कि उससे मुक्त होने का कारण था उसके द्वारा नारायण का उच्चारण, किंतु तब उसका उच्चारण करना नाम अपराध हुआ होता। अगर उसने ये सोचा होता कि मैं ये पाप कर रहा हूं और नारायण के नाम में तो इतनी शक्ति है कि कोई पापी इतने पाप कर नहीं सकता जितने नाम में शक्ति है पाप दूर करने की, होता तो पाप कर नहीं सकता, तो क्या है फिर तो खूब करूं कि मैं उतने पाप कर भी नहीं सकता जितना नाम पाप दूर कर सकता है, तो ये क्या हो जाता, अपराध हो जाता है, अपराध हो जाता है। और अपराध में क्या होता है, नाम की शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे अग्नि है तो सूखे ईंधन को जला के भस्म कर देगी, है ना, सूखे ईंधन को जला के भस्म कर, रुई का ढेर है मान लो, पहाड़, एक पहाड़ है रुई का पहाड़, आपने थोड़ी सी चिंगारी लगा दी और पूरा रुई का पहाड़ क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। एक उसी में आपने पानी डाल दिया, अब क्या होगा, अब नहीं जलेगा, अब अग्नि की शक्ति नहीं रहेगी जलाने की। उसी प्रकार से नाम में पाप को जो है नष्ट करने की शक्ति है, पापों को जलाने की शक्ति है, लेकिन अगर आप पानी डालते हैं, हरि बोल, नींद आ रही है, तो आप पानी डालते हैं तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, जलाने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो अजामे ने नहीं किया अपराध, पाप कर रहा था लेकिन अपराध नहीं किया। और आप अगर ऐसा सोचेंगे कि मैं तो पाप कर लूं, भगवान अजामिल तो इतना पापी था, तो आपका अपराध हो जाएगा, तो आप अजामिल की नकल नहीं कर सकते। आप अजामिल की नकल नहीं कर सकते, संभव नहीं है, इम्पॉसिबल, अजामिल की नकल आप नहीं कर सकते। अजामिल ने नहीं सोचा है कि मैं पाप कर रहा हूं और नाम में तो इतने पाप करने दूर करने की शक्ति है, वो तो मूर्ख है। तो यहां पर लिखा है, नामना बलाजस ही पापे बुद्धि, नामनो बलाजस ही पापे बुद्धि, ये सातवां अपराध है, नाम के बल पर पाप करना। जो व्यक्ति पाप कर्म करता रहता है और भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके अपने पापों को नष्ट करना चाहता है, वो नाम का अपराधी है, तो ऐसे में पाप नहीं दूर होंगे, तो ये अपराध हो गया। इसके प्रत्युत्तर में ये कहा जा सकता है कि जामिल द्वारा नाम लिया जाना निरपराध था, क्योंकि वो अपने पापों के निवारण के लिए नारायण नाम का उच्चारण नहीं करता था। एकमात्र नारायण नाम लेने का कारण क्या था, उसकी आसक्ति, और वो भी आसक्ति कैसी है, भौतिक आसक्ति, अपने पुत्र में आसक्ति, उसमें वो नाम ले रहा था। वो ये नहीं जानता था कि वह पाप कर्मों में लिप्त है, ना ही वो ये जानता था कि नारायण का नाम लेने से वो पापों को निरस्त कर रहा है। इस तरह उसने नाम अपराध नहीं किया और अपने पुत्र को बुलाते समय उसके द्वारा नारायण नाम का बारंबार लिया जाना शुद्ध कीर्तन ही कहा जा सकता है। शुद्ध कीर्तन का मतलब शुद्ध नाम नहीं है लेकिन अपराध नहीं है, ये बीच का है, नामाभास बोलते हैं, है ना। तो नामाभास में भी जो है मतलब बड़ी शक्ति है। तो यहां पर कहा गया शुद्ध कीर्तन, तो शुद्ध कीर्तन के बराबर इसमें भी जो है शक्ति है, फिर भी अंतर है। तो ये नाम जो है शुद्ध नाम और फिर नामाभास और फिर नाम अपराध, ये तीन अवस्थाएं हैं उसी प्रकार से जैसे सूर्य का उदय। और सूर्य का जब उदय होता है आपको दिखाई पड़ता है सूर्य, तो कितना प्रकाश होता है। और दूसरा अवस्था है सूर्य का आभास, मतलब सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहा है लेकिन सूर्य का आभास से क्या होता है, अंधकार दूर हो जाता है। उतना प्रकाश तो नहीं होता जितना सूर्य के उदय के समय होता है, उतना प्रकाश तो नहीं होता लेकिन तो भी अंधकार दूर हो जाता है और आपका भय दूर हो जाता है। तो सूर्य का आभास कहलाता है वो, जब सूर्य का उदय नहीं हुआ है। सूर्य उदय होने से पहले सूर्य का आभास होता है, उससे क्या होता है, अंधेरा दूर हो जाता है। उसी प्रकार से नाम के आभास से भी अजामिल के पाप दूर हो गए, अंधकार। अजामिल के पाप क्या, अंधकार के समान है, वो दूर हो गए नाम के आभास में। ये नाम अपराध क्या है, नाम अपराध क्या है, सूर्य अस्त, सूर्य का अस्त हो जाता है तो क्या होता है, अंधेरे अंधेरा है, अंधेरे अंधेरा है। तो नाम अपराध में जो है नाम को, नाम का आपको कोई फल नहीं मिलता है क्योंकि सूर्य अस्त हो गया। और नाम आभास में आपको बहुत बड़ा फल मिलता है, और शुद्ध नाम में तो उससे ज्यादा है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो नाम के आभास से आपको मुक्ति मिल जाती है, पापों से मुक्त हो गए आप। ये कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम कब मिलेगा, शुद्ध नाम से। तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलता है, ये जहां तक मुक्ति की बात है वो नाम आभास से मुक्ति मिल जाती है। आप सब पापों से मुक्त हो गए, करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो गए अगर अपराध नहीं किया। तो इसको कहा गया है शुद्ध कीर्तन, कि वो अपने पुत्र को बुला रहा था तो शुद्ध कीर्तन कहा जा सकता है, यहां पर कहा जा सकता है शुद्ध कीर्तन कहा जा सकता है। अगर गहराई से देखें तो शुद्ध नहीं है तो फिर भी शुद्ध की तरह है। अगर मोटे हिसाब से देखें तो ये भी शुद्ध है। सूर्य के उदय होने से पहले अंधकार दूर हो गया, आपका डर दूर हो गया, आप बहुत सुरक्षा का अनुभव करते हैं, है ना। तो यहां आगे लिखा है दरअसल, अच्छा नहीं, इस शुद्ध उच्चारण के कारण अजामिल भक्ति के फलों को अनजाने संचित करता रहा, उसका संचित हो रहा है, उसका जो सत्कर्म है वो संचित हो रहा है भक्ति के फल। दरअसल उसके जीवन के सारे पाप फलों को निरस्त करने के लिए उसके द्वारा पवित्र नाम का पहला उच्चारण ही पर्याप्त होता। यहां पर एक नीति शास्त्र का उदाहरण उद्धृत किया जा सकता है, अंजीर के वृक्ष में तुरंत फल नहीं लगते, अंजीर के वृक्ष में तुरंत फल नहीं लगते किंतु समय आने पर फल प्राप्त होते हैं। इसलिए अजामिल की भक्ति रंच रंच करके बढ़ी, अतः अत्यंत पाप कर्म करने पर भी वे फल से प्रभावित नहीं कर सके। शास्त्रों में कहा गया है यदि कोई भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण करता है तो उसे भूत वर्तमान या भावी पाप में जीवन के फल प्रभावित नहीं करते। एक अन्य उदाहरण दिया जा सकता है, यदि कोई सर्प के विषैले दांत निकाल ले तो भविष्य में यह सांप जिसे शिकार बनाएगा उसे विष नहीं व्यापेगा, सांप काटेगा लेकिन कुछ विष नहीं आएगा क्योंकि विष के दांत उखाड़ दिए। भले ही ये सर्प उसे बारंबार क्यों ना काटे, इसी तरह यदि कोई भक्त निरपराध होकर एक बार भी पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो उससे उसकी शाश्वत रक्षा होती है। इससे उसे उच्चारण करने के फल के यथा समय परिपक्व होने की केवल प्रतीक्षा करनी होती है। तो ये टिप्पणी समाप्त हुई श्रीमद् भागवत के छठे स्कंध का दूसरा अध्याय के अंत में टिप्पणी जो प्रभुपाद ने दी है वो समाप्त हो गई। तो ये समझना है हमें लेकिन हम लोगों के लिए ये लागू नहीं होता। हमें क्या करना है, नामापराध युक्ता नाम नामान्य हरंत घम अविश्रांति प्रयुक्तानी तान्यवार्थ करानी पड़ता। अब नाम अपराध हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें तो वो परिणाम नहीं मिलेगा जो एक बार नाम उच्चारण करने से जो परिणाम प्राप्त होता है। हम करते हैं रोज 16 माला जप करते हैं तो भी परिणाम हमको नहीं मिलता। 16 नाम में कितने नाम होता हो जाते हैं, 25,000 तो हम मोटे तौर में, 27,000 से भी ऊपर होता है ना। 108 × 16 × 16 27,000 से ऊपर नाम होते हैं। रोज आप 16 माला जाप करते हैं तो भी आपको परिणाम नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, नाम अपराध। नाम अपराध अगर होता है तो आपको परिणाम नहीं मिलता। ये फिर क्या करें, नामापराध युक्ता नाम नामान्य भरंत घम, तो नाम अपराध से जो युक्त है उनके लिए नाम ही उसके पाप को दूर करते हैं। अविश्रांत है प्रयोक्तानी, अविश्रांत, अविश्रांत मैंने बिना विश्राम किए बोलते रहो। 16 माला तो कम से कम है, ये नहीं समझना कि 16 माला कर लिया तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, बस हाथ झाड़ो हो गया, नहीं। अविश्रांत प्रयोक्तानी, बिल्कुल विश्राम नहीं करना है, तान्य वर्थ करानी चाहिए, तभी कुछ अर्थ निकलेगा, कुछ फायदा होगा। नाम का अर्थ है तब कुछ निकलेगा। तो हमें जो है मतलब ये करना है, हमें पापों से बचना है, यथासंभव पापों से बचना है और नाम का जो है उच्चारण लगातार करना है। तो ये जो है हम लोगों के लिए है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। और फिर भी भगवान की बहुत कृपा है, ये मानना है कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है कि आप नाम हर समय लेते हो, अशुद्ध अवस्था में भी लेते हो, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते आप नाम लेते हैं तो कोई आपको दोष नहीं लगता है और आपको बहुत लाभ है, ठीक है ना। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? हाँ जी, फैन में चालू कर दो।
हरे कृष्ण, धन्यवाद कवि जी। आपने बताया जामिल ने जब नाम लिया अपने प्रकार पाप अपराध नहीं था, क्योंकि उसने इस प्रकार जो सातवां नाम अपराध है उसने उससे मुक्त था। परंतु गुरु जी जैसे अजामिल में देखें तो उसे 10 नाम अपराध में से अन्य अपराध तो हो सकता है उसने किए हो, उसकी भौतिक आसक्ति थी जिसको बनाए रखता था, और हो सकता है वो कृष्ण को नारायण को देवी देवता के समाज समझता हो, संत और गुरु
कोई अपराध नहीं है। भौतिक आसक्ति को बनाए रखना वो अपराध तब होता है जब इतनी महिमा समझने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, क्या है वो शब्द क्या है, 10वां अपराध है। हाँ, हरि नाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, तो उसकी भौतिक आसक्ति थी लेकिन वो तो कुछ नहीं जानता, आप समझ रहे हैं। तो जो भी हो उससे अपराध नहीं हुआ तो ये एक बहुत बड़ी जो है घटना है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उससे अपराध नहीं हुआ। हाँ जी चालू है।
बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से नाम की महिमा समझाए। आपने बताया जैसे गजेंद्र ने भी भगवान का नाम लिया, लेकिन देखते हैं गजेंद्र ने केवल परम शक्तिमान को बुलाया, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया था।
हाँ, ये नाम की महिमा नहीं है। गजेंद्र की जो कथा है श्रीमद् भागवत में उसमें नाम की महिमा नहीं है, वो एक अलग ही घटना है। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भेदाभिमाना नैते दो प्रसिद्धपुर लिखिलात्मक सर्वाखिलमयो हरिराग राशि। उसने जो है नाम नहीं लिया था, तो वो ईश्वर जो है मेरी रक्षा करे जिसमें ये भी गुण नहीं है उसमें वो भी नहीं है, तो सब निषेध करके उसने उच्चारण किया था। तो एक अलग ही वो भगवान की महिमा है। और ब्रह्मा आदि जितने भी देवता थे विविध लिंग भेदाभि, वो अपनी पहचान कर रहे हैं कुछ विशेष अपने शरीर में अपना, तो उन्होंने जो है मतलब गजेंद्र ने जो वर्णन किया था वो कि वो ऐसे भी नहीं है वो ऐसे भी नहीं है, तो वो सब जो है भगवान आविर्भूत हुए उस समय, क्योंकि वही वो जो निषेध सब प्रकार के निषेध भगवान में ही है, तो एक अलग मतलब वो घटना है ना। ये नाम की जो महिमा है जो हमें मिलती है वो अजामिल की कथा से मिलती है, सबसे ज्यादा नाम की महिमा अजामिल की कथा से मिलती है कि जब वो अपने पुत्र को बोल रहा है और वो उसमें उसका कोई भाव ही नहीं है। और कोई हाँ जी, एक दो तीन चल पहले इनको दीजिए। चालू है, चालू है।
हरे कृष्ण, थैंक यू भाई।
चालू है, चालू है, बोलो।
हरे कृष्ण जी, इसमें
उसमें बोलो ना, माइक पर बोलो।
हिलरा भाई भगवान,
हाँ बोलो बोलो।
जैसे इसमें प्रसंग आया था कि जो अजामिल था उसने शुरू में शुद्ध नाम लिया था, इसी प्रकार जैसे हम कृष्ण कॉन्शियस में आते हैं तो हम जानते भी अपराध के बारे में, लेकिन भगवान का नाम लेते हैं जब भी हम एंटर करते हैं कृष्णा कॉन्शियस में, तो उसके बाद अपराध शुरू होता है, जाके हम सुनते हैं सब कुछ बारे में। तो जो हरे नाम पहले ले चुके हैं वो भी हमारी उसी तरह से रक्षा करें,
वो अपराध हो जाता है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। तो बाद में अपराध ना हो, और अजामिल का यही सौभाग्य था, अजामिल का यही सौभाग्य था कि उससे जो है अपराध नहीं हुआ, और विष्णु दूतों का दर्शन भी प्राप्त हुआ और यम दूतों का भी दर्शन प्राप्त हुआ, उसको घोर यातना भी दिखाई दी नरक की, और जो है विष्णु दूतों से उसने नाम की महिमा सुनी और उसकी चेतना फिर इतनी शुद्ध हुई कि उसको फिर बहुत नफरत हुई अपने पापों से। उसकी चेतना जब शुद्ध हुई तो भगवान के भक्तों का दर्शन हुआ और उनके मुख से उसने प्रवचन सुना, उसकी चेतना इतनी शुद्ध हुई कि फिर उसको बहुत नफरत हुई और अपने बहुत निंदा करने लगा, और तुरंत उसने फिर छोड़ दिया। हाँ, कन्नौज में था वो कान्यकुब्ज, और हरिद्वार में आया और विष्णु के मंदिर में जाकर के एकमात्र वो जो है साधना करने लगा, पक्की साधना करने लगा। तो नाम से जो है अगर आप शुद्ध हो जाते हैं तो फिर आपका मन जो है मतलब कृष्ण कथा में लगेगा और पक्की साधना करेंगे, ये उसका जो है लक्षण है कि आपसे अपराध नहीं हुआ और नाम का जो है आपको फल मिला। दूसरा कि आप यहां सुनाए
तो जी, अजामिल जो है जब भगवान का नाम नारायण नाम ले रहा था तो वो भक्ति में विकास कर रहा था, तो उसकी जो पाप की प्रवृत्ति थी वो भी साथ में कम होनी चाहिए जो वो पाप कर रहा था।
हाँ, यही तो प्रश्न उठाया गया है, यही प्रश्न उठाया गया। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया अंजीर का, जैसे वृक्ष है, अंजीर का वृक्ष है तो उसमें फल बहुत सालों के बाद लगते हैं, लेकिन वो बीज है आपने बीज बो दिया और अब वो जो है सुरक्षित रूप से वो बड़ा हो रहा है, तो फलीभूत फल तो बाद में निकलेंगे उसके, लेकिन वो निश्चित है कि वो फलीभूत होगा। तो इसी प्रकार से नाम के द्वारा वो पापों से मुक्त हो चुका है और अब जो है केवल समय का अंतर है कि एक निश्चित समय पर वो जो है मतलब आएगा। इसको समझना आपका प्रश्न है
जी। सर, गजेंद्र की कथा में प्रसंग में सुनते हैं कि जो गजेंद्र ने प्रार्थना की तो सांकेतीय तरीके से भगवान को पुकार रहे हैं।
किसने?
गजेंद्र ने। और अजामिली केस में सांकेतीय नवाभास का ही आता है उदाहरण कि उसने नारायण का नाम पुकारा, तो उसमें तो दूत को भेजा भगवान, आपने बताया था कि जैसे भगवान स्वयं आते,
भगवान
स्वयं आए, और दोनों ही प्रसंग में आता कि सांकेतीय तरीके
से। अच्छा प्रश्न है,
तो
अच्छा प्रश्न कि गजेंद्र ने जो है भगवान का कोई नाम नहीं लिया और वो बताया, उसने बताया कि वो रक्षा करें, वो पुरुष मेरी रक्षा करें। कोई पुरुष है, गजेंद्र ने जो है इस तरह से प्रार्थना की थी, कोई पुरुष है जो कि सबके ऊपर नियंत्रण, जिनका सबके ऊपर नियंत्रण है, और वो जो अवतार लेते हैं, वो अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन कोई नाम नहीं और कोई रूप का उसने वर्णन नहीं किया। तो भगवान जो है जो है जो अवतार लेते हैं और जो सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, तो भगवान आ गए, उन्होंने अपना दर्शन दे दिया कि मैं ही वो हूं और कोई ऐसा नहीं हो सकता, सबके हृदय में विराजमान और कोई है नहीं, ब्रह्मादेव लिंग भिदाभिमाना नैते दो पिशतपुर, सब देवता लोग भी देख रहे हैं लेकिन वो विचार कर रहे हैं कि जो प्रार्थना कर रहा है वो लक्षण मेरे अंदर नहीं है तो कोई नहीं आए रक्षा करने के लिए। ये किसको बुला रहा है? हमको तो नहीं बुला रहा है। सबके हृदय में, सबके हृदय में जो भगवान है आसीन है तो मेरी रक्षा करें, अब कौन आएगा? सबके हृदय में आसीन भगवान है, उनका वही रूप है, उस रूप से आसीन है जिस रूप से वो भगवान है, और सब अवतार भी लेते हैं, अवतार भी लेते हैं वो, उन्हीं से ही सब अवतार होते हैं, तो वही भगवान आए, ठीक है ना? तो मुझे वो भगवान दर्शन दे जो सबके हृदय में विराजमान, तो कौन आएंगे? और आप दर्शन मांग रहे हैं तो कौन आएंगे? वो जाएंगे तो आप नहीं जानते हैं तो वो आएंगे, ठीक है ना? कई प्रश्न चलो अब सभी के उत्तर नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन आखिरी प्रश्न
जी, हम कोई स्टेटमेंट सुनते हैं जैसे, तो कोई स्टेटमेंट सुनते हैं हमें बड़ी इजी लगती है,
कहां
कोई स्टेटमेंट सुनते हैं हमें बड़ी इजी लगती है कि ये तो इतना आसान चीज है, तो कभी बहुत मुश्किल भी लगती है, इतनी मुश्किल चीज है, तो मन में आता है कि क्या विचार आता है मन में कि इसका रेफरेंस होना चाहिए, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। आपने इससे बताया था कि अगर कोई प्रिंसिपल सुनते हैं स्टेटमेंट सुनते हैं तो हमको, अगर हम सोचते हैं कि ये तो अगर सोचते हैं हमें फीलिंग आती है अगर किसी,
ये आपका बहुत लंबा प्रश्न हो रहा है, पीछे बलो
तो जी, जो भक्ति में आया हुआ व्यक्ति है, काफी समय से भक्ति कर रहा है, तो हालांकि उसने काफी सुना है और वो ना चाहते हुए भी जनरली उसके अनर्थों के कारण ही उससे अवैध अपराध होता है, तो वो उसके मन में तो इच्छा नहीं होती कि नहीं करने की, लेकिन ही इज फोर्स्ड बाय हिज कंडीशनिंग्स। अब भगवान खुद कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्व शांति में, तो उसकी स्थिति अजामिल से ज्यादा अच्छी नहीं हुई, क्योंकि भजन क्रिया में लगा, अजामिल तो बाद में भजन क्रिया में लगा था।
इसका उत्तर यही है कि अजामिल के पिछले जन्मों का इतना अभ्यास था, उसने बचपन में भी बहुत सच्ची जो है सेवा की थी, भगवान की सच्चे हृदय से सेवा की थी, इसलिए उसका यह सौभाग्य बना कि उससे अपराध नहीं हुआ, और हमारा जो है इतना सौभाग्य नहीं है कि अपराध नहीं हो रहा है, तो हमारा इतना सौभाग्य नहीं है, अपराध हो रहा है, अनजाने में भी अपराध हो रहा है तो भी जो है वो नाम की शक्ति खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमारे लिए यही विधि है कि अविश्रांति प्रयोक्तानि, आप जो है मतलब पक्का, खूब पक्का आप जो है नियम बनाइए कि आप जप करेंगे, मंगल आरती में आना है, क्लास में बैठना है, जिसको कहते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के नियमों का पालन करिए, तो जो आप भक्ति के और भी जो अंग हैं, श्रवण है और जो है पूजा है, मंगल आरती है, तो ये सब जो आप करते हैं तो ये आपकी सहायता करेंगे कि आपसे अपराध ना हो। तो इसमें अविश्रांति प्रयोगता नहीं है, तो नाम भी आप बिल्कुल लगातार लेते रहिए, तो उससे ज्यादा सरल है कि प्रभुपाद ने जो कार्यक्रम दिए अलग अलग, उसमें वेराइटीज है, तो आप उसमें लगे रहिए। एक तो ये भी दी है कि आप अविश्रांत नाम ही आप बोलते रहिए, है ना, हरदास ठाकुर की तरह, तो वो इतना आसान नहीं है, आप वो नहीं बन सकते। तो भक्तों की संगति में अगर आप अलग अलग वेराइटीज के जो कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उनमें आप लगे रहते हैं तो वो ज्यादा सरल है। तो प्रभुपाद का बहुत बड़ा जो योगदान है वो ये है कि आपको ये संघ दिया, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ दे दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस आपको दी, तो यहां पर सब भक्तों का जो है मतलब एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है कि हमें कृष्ण भावना भक्त बनना है, और एक दूसरे को बताते हैं और एक दूसरे को सावधान करते हैं, सचेत करते हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना है, ये गलत है, ये नहीं करना, क्या करना, ये करना, ये नहीं करना। इस प्रकार से हमें जो भक्तों का संग मिला है तो ये बहुत बड़ी जो है मतलब सुविधा है, बहुत बड़ा अवसर है, ठीक है? आखिरी प्रश्न
जी, छोटा सा इसमें
अजामिल को अजामिल ने कहीं जाके गुरु की शरण ली थी बाद में?
अजामिल ने जो है, अब वैसे तो नहीं कुछ बताया गया कि गुरु की शरण ली, लेकिन जो विष्णुदूत थे उनसे उसने सुना, उसने उनसे सुना और उसने जो है फिर तीव्र भक्ति से जो है उसने जो है नाम का साधन किया, तो वही विष्णुदूत फिर उसको लेने के लिए आए। ठीक है, इनको प्रश्न।
हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी मेरा प्रश्न है कि जो हरि नाम है, भगवान का नाम है, वो रूप से चिन्मय है, चिन्मय है, और हम देखते हैं कि जो सूरज है, सूरज अपना प्रकाश ऐसे व्यक्ति को भी देता है जो कितना ही पापी है, दुराचारी है, और जो सत्य जो सत्कर्म करता है उसको भी प्रकाश देता है। तो हरि नाम तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, और ये कहना कि अगर कोई व्यक्ति नाम अपराध करता है तो उसको कोई फल प्राप्त नहीं होगा, तो ये उनकी आध्यात्मिक प्रकृति अच्छा के अनुकूल नहीं
है? अच्छा प्रश्न है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्यस्य विग्रहवान पूर्णा शुद्ध हो नित्य मुक्त हो अभिन्न पात नाम नाम हो। तो चैतन्य रस विग्रह, ये नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, एक तो है अग्नि, हाँ कभी कभी नाम की उपमा दी जाती आग से, तो आग जो है देखती नहीं, कोई भी हाथ डाले तो चला देगी, उसी प्रकार से नाम भी जो है नहीं देखता है, कोई कितना ही पापी हो नाम लेता है तो पापों से मुक्त कर देता है। तो अग्नि जो है चेतन नहीं है, अग्नि चेतन नहीं है, अग्नि जल वस्तु है, कोई भी नाम मतलब हाथ डाले उसका क्या भाव है, अग्नि नहीं देखते, आग जला देती है, तो नाम उसी प्रकार से अग्नि के समान है। लेकिन फिर दूसरी बात बताइए, चेतन रस्ते का इसमें मतलब पूरा चेतना है नाम में, तो आप अपराध अगर होता है तो नाम विचार करता है, आपके कितने पाप हैं उन पर विचार नहीं करता नाम, तो वो जड़ की तरह है, अग्नि जैसे जड़ है, तो नाम में जो है ये जड़ता भी है, आपके पाप पर विचार नहीं करती नाम, नाम ऐसा जड़ है, लेकिन नाम चेतन है। किस मामले में? अपराध, आप सुन रहे हैं, तो नाम चेतन भी है, इसलिए आप बहुत सावधान रहिए। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमन भागवतम की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की 17 दिवसीय विश्व हरि नाम महामहोत्सव की श्री श्री राधिका रमन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर नेताई की जय, कृष्ण बलराम की जय।